Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भगवान ने कहा कि अच्छा, समुद्र में गायब जाकर छुप गए हैं, समुद्र से निकालने का उद्गम करो, उद्यत करो, उद्योग करो। लेकिन वह चीज, क्योंकि समुद्र का साम्राज्य फिर असुरों के हाथ में है और उन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत से जो रत्न निकालना है, तो उनको विश्वास में लिए बिना ऐसे होगा तो क्या करें? तो उनके साथ जाओ, संधि करो, ये चीज तुम्हारे साम्राज्य में है और हम इसको निकालने में मदद करते हैं और उसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें भी मिलेगा, शेयर करेंगे उसमें से, है ना? कहते हैं ना कि अमेरिका के पास जो खनिज तेल है, गैस है, अपार खनिज तेल और गैस है, लेकिन अमेरिका उसको दोहन नहीं कर रहा है, कहते अभी रिजर्व में रखा है, ऐसा सुना है हमने, उसकी नीति है। तो क्या है कि बोले जहां है उनको अपने हाथ में लेकर बोले हम तुम्हारे यहां ऐसा करेंगे, ये प्लांट लगाएंगे, यहां से तेल निकालेंगे, हम भी खरीदेंगे, औरों को भी बेचेंगे, तुम्हें इतना लाभ होगा। ये अरब कंट्री में, अब वो लोग आ गए झांसे में और लगाया, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा लिए और खूब दो रन कर रहे हैं और ले रहा है, अपने अमेरिका में भी ले जा रहा है, बाहर भी बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? बोले जब यह समाप्त हो जाएगा तब अपना शुरू करेंगे, दुनिया रोती रह जाएगी, अपने ठीक रहेंगे। ये तो जब इराक कुवैत आदि का तेल खत्म होगा ना, तब अमेरिका अपने आके दोहन करेगा। लोग कहते हैं ऐसा, उसकी नीति है, हमको उसकी कोई आलोचना करना नहीं, हम फिर वहीं जा रहे हैं 28 तारीख को तो उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, नीति है वो। इसी तरह भगवान ने कहा देवताओं को, उनके छत्र का दोहन करना है तो उनसे समझौता करना जरूरी है, तुम्हें भी ये फायदा होगा ये बताना जरूरी है। अमृत है, वहां से निकालेंगे, कुछ तुम भी ले लेना, कुछ हम भी ले लेंगे, पान करेंगे तो फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा मृत्यु का डर असुरों को होता है। राजी हो गए, लक्ष्मी निकलेगी, अमृत निकलेगा, जहर निकलेगा किसी ने नहीं कहा, सोचा भी नहीं था। अकांड ब्रह्मांड अच्छे चकित, जहर निकलेगा तो कोई भी नहीं सोचे, क्योंकि जहर को रत्न के अंतर्गत किसी ने गिना ही नहीं था, 14 रत्नों में से जहर को गिना ही नहीं था, निकल गया, वो दुर्भाग्य की बात है। वो तो शिव ही संभाल पाए, नहीं तो बात जो है गड़बड़ हो चुकी थी, शिव ही संभाल पाए, नहीं तो गया, खत्म हो गया था, मंथन किया था अमृत के लिए और जहर निकल गया, तब वो राजी हो गए तो समुद्र मंथन हो गया। कहते उसमें से जहर निकला तो सब घबरा गए, अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवासुर कृपा विधेयस्या सिद्ध स्त्रीनयन विषम संहृतवत। सभी ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उस विष का संहार कर दिया। उसके बाद जब मंथन शुरू हुए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रत्न निकलने लग गए। उच्च सर्वा निकला, ऐरावत निकला, है ये तो आप लोगों ने सुना है ना, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अमृत लेकर जब धन्वंतरी निकले, लक्ष्मी निकली, चंद्रमा निकले, सोम निकला, कितने चीज निकले, कल्पवृक्ष निकला, चिंतामणि निकला, जब अमृत निकला तो सब लोग, मंथन पूरा हो गया क्योंकि उसी के लिए मंथन कर रहे थे, अमृत निकल गया, निकल गया, मंथन छूट गया, अब तो देवता और असुरों में छिना झपटी हुई। असुर लोग कहने लगे कि ये हमारे क्षेत्र से निकला हुआ है, ये समुद्र से, तो इसका पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। देवता लोग कहने लगे कि यहां समुद्र में अमृत है, इसको निकालना चाहिए। पहला प्रस्ताव हमने लाया, इसलिए हमको मिलना चाहिए। तुम्हारे क्षेत्र में होने से क्या होता है, तुमको तो पता ही नहीं था। अनुसंधान करके, रिसर्च करके पता लगाया किसने, हमने। निकालना चाहिए प्रस्ताव रखा किसने, हमने, इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। असुर लोग कहने लगे नहीं नहीं हमारे क्षेत्र का है, इसलिए पहले हमको मिलना चाहिए। तो छिना झपटी शुरू हो गई। तो आगे आप लोगों को पता ही है कहानी। भगवान नारायण ने मोहनी रूप धारण किया और कहा कि अरे अरे तुम लोग चिंता न करो भाई, मत लड़ो, दोनों को सबको मिल जाएगा, बैठ जाओ लाइन से, मैं बांटता हूं। बांटती हूं और क्या है? बांटता हूं तो क्या कहेंगे, मोहिनी था ना वो, तो बांटती हूं, मैं बांटती हूं। इतना सुंदर था, सब लोग विश्वास कर गए। सुंदर व्यक्ति को सभी विश्वास करते हैं, है? बाचा बपुसा वस्त्रेणा, आप लोग पर्सनालिटी बोलते हो ना अंग्रेजी में, है? वैभवेना, बाचा बपुसा वस्त्रेण वैभवेना, बाचा वाणी से व्यक्ति की पर्सनालिटी पता चलता है कि ये किस लेवल का है। उसके पहराव वस्त्रों से भी उस व्यक्ति के बारे में अनुमान किया जा सकता है कि ये किस लेवल का है। उसके शरीर की बनावट से भी पता चलता है कि ये किस लेवल का है। उसके बोलने की शैली से पता चलता है कि ये किस लेवल का है। ये अनुमान है। तब बताया कि मोहिनी आ गई और उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, हम बांट देंगे, चलो बैठ जाओ लाइन से। बैठ गए फटाफट। भगवान ने कहा असुरों को, जाकर मोहिनी ने भगवान असुरों को, आजकल करते हैं ना पुलिस वाले ड्राइवरों का, कहीं मदिरा पान करके ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, तो नाक सूंघते हैं, हैं? पुलिस वाले जाके नाक सूंघते हैं, उसके मुंह सूंघते हैं, पता लगाते हैं तूने मदिरा पान किया है ड्राइवर, तेरे लाइसेंस गया। मोहिनी ने नाक सुना असुरों को, अरे तुम लोगों ने मदिरा पान किया था? बोले हां, असुर तो कहेंगे नहीं, कहेंगे पिया तो था महाराज, है? हर असुर मदिरा पान करता है, और मदिरा पान करता है वो असुर ही है। बोले मदिरा पान करने वाला कहीं अमृत पान कर सकता है? पहले जाओ कुल्ला करो, ब्रूस करो, नहाओ धो, तो बढ़िया वस्त्र पहनकर आओ। देखो देवताओं ने मदिरा पान नहीं किया, कितने स्वच्छ हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने स्वच्छ हैं, तुम लोग भी ऐसे बनकर आओ। मोहिनी थे तो मोहित हो गए असुर भी, बोले तुम ठीक कह रही हो। अब भी जाते हैं, गए कोई दांत मांजने लगा, कोई ब्रश करने लगा, कुछ करने लगा, सब नहाने लगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, और इतनी में भगवान ने इधर बांटना शुरू हो गया, जल्दी आना। वो लोग तो नहाने धोने में ही लगे रहे। जो केवल नहाने धोने में समय बर्बाद करता है उसका नाम क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा समय तो किसको लगता है बाथरूम में, बोलो? माताओं को लगता है। कभी नाग रगड़ेंगे, कभी पांव रगड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, ले नहाने धोने में समय बर्बाद करे वो असुर। भगवान के भजन में इतना समय नहीं दे सकते, नहाने धोने में समय बर्बाद होता है। पूजा करते हो नहीं, बोले फुर्सते नहीं होता है। नहाते हो कि नहीं? नहाता हूं, नहाता तो हूं। नहाने में कितना समय लगता है महाराज? दाढ़ी बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लगभग पौना घंटा लगता है। ले जी रोज लगता है पौना घंटा। अब असुर नहीं है तो और क्या है? नहाने में पौना घंटा, अब भजन के लिए पांच मिनट नहीं। लेट हो गया तो क्या करे? बांटना शुरू कर दिया। उधर देखा एक ने, राहुल ने, ये तो गड़बड़ हो रहा है, वहां पंक्ति शुरू हो गई। फटाफट आ गया, धोती लपेट लुपुट के, त्रिपुंड लगा के, और सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। बांटते ही आए, भगवान आए उसके थाली में, आप लोगों ने बड़े बड़े कुंभ मेले में साधुओं का भंडारा देखा है कि नहीं? समझते हैं, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम, दौड़ते हैं वो मांगने वाला, ए सब्जी बोलो, वो तो वहां पहुंच जाता, फिर लौट कर आता बेचारा। वो इतनी तेज उनकी सर्विस होती है, वो ट्रेनिंग है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। पांच पांच छह छह हजार की पंक्ति एक ही बार में बांटनी है, साधु लोग ही उसमें परफेक्ट है, ट्रेनिंग लेते हैं। भगवान तो निकल गए, थाल में उसके पड़ गया अमृत। अब उसने विचार किया कि कहीं, क्योंकि जो व्यक्ति गलत है उसके मन में मैं गलत हूं तो हो रहता ही है ना, डर गया। भगवान ने मेरे थाल में दे दिया है, पोल पट्टी खुलने से पहले पी लो। तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहने की वो प्रतीक्षा ही नहीं करने लगा। आप लोग भी करते हो ना असुर की तरह, है? थाल कटोरी गिलास सब पहले टेबल में रखता है, परोसने वाला पहले दाल लाके कटोरी में डालता है, तो आप वो कटोरी में डाला नहीं कि चम्मच से सूप दाल शुरू किया, भात नहीं है, अपोषण करना नहीं है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि करना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्वकेल विषय भुंजते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा प्राण समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर। ये सारे अन्न शोधन के मंत्र हैं। सभी चीज थाली में आने के बाद इस प्रकार से यज्ञ करो, तब वो अन्न शुद्ध होगा। अब वो लाके दाल दे दिया कटोरी में, सब्जी लेने गया तो तब तक दाल पीना शुरू कर दिया, अब फिर सब्जी रख के चला गया तो सब्जी खाना शुरू कर दिए, पकौड़े रख के चला गया तो भात लेने गया तो तब तक तो पकौड़े खत्म हो गए। ब्रह्मार्पण कब करेगा बेटा, है? तो इस तरह खाने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे बोलो, है? क्या कहेंगे उसको, आप ही बोलो नाम, जो राम रखना है रख लेना भाई, राहु रख लो, असुर रख लो, है? उसने तो ब्रह्मार्पण प्रतीक्षा ही नहीं की, बस पीना शुरू कर दिया तो सूर्य और चंद्र, ये क्या बात है, ये हमारे संस्कार का, हमारे बिरादरी का नहीं है, ये तो कहीं और कहीं बांटा कहीं से आया है, बिना संस्कार का क्या है, जरा ध्यान दिया तो अरे ये तो असुर राहु। भगवान को कह दिया कि भगवान गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ महाराज, गलत व्यक्ति ने अमृत पान कर लिया है। कौन? बोले असुर। भगवान ने देखा तो अरे तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और फेंक दिया, गर्दन काट दिया, लेकिन करते क्या, अब हो तो अब बचता है कि हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो हम भी इसी तरह पछताते हैं, काट दिया तो क्या, गले से नीचे उतर चुका था अमृत, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, मरा ही नहीं, दो टुकड़ा हो गया तो भी नहीं मरता है, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा देवताओं से मीटिंग करके, देखो भाई ये था तो असुर, आ गया तुम्हारे पंक्ति में, अमृत पान कर ही लिया है, अब इसको असुर के ग्रुप में जाने नहीं देना, है ना? नेता लोग करते हैं ना कि दूसरे के पार्टी के हमारे में आ जाए, है? वोट क्रॉस वोटिंग हुआ है ना अभी राज्यसभा के चुनावों में, सब लोगों ने निकाल दिया जिन्होंने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, है? अब दूसरे पार्टी उसको अपने पक्ष में लेने के तरखर में है, जुगाड़ में है, तो जाने नहीं देना, ख्याल रखना। देवताओं ने कहा कि जाने नहीं देंगे, तो क्या करें? बोले अपने ही सर देवता तुल्य बनाकर देवता सराह उसका भाग देकर रखा है, लेकिन तब से लेकर उनको अभी भी, जबकि राहु केतु को भी देवता के ही कोटि में उसकी पूजा होती है, फिर भी उसके अंदर एक तीस भरी हुई है कि इसने, इन दोनों ने इशारा करके हमारी गर्दन कटवा दी। परिणाम क्या होता है? तो समय समय में दोनों के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, तो वो ग्रहण जो लगता है ना, तो हमारी पुरानी मान्यता, तो पौराणिक मान्यता तो ये है, ये वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। हाँ, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु, दिवाकर और इंदु, हिंदू माने चंद्रमा, दिवाकर माने सूर्य, राहु ग्रस्त। जैसे वश ईर्ष्या के चलते राहु समय समय में कभी सूर्य को ग्रसित करता है, कभी चंद्रमा को ग्रसित करता है, उस प्रसंग को यहां शंकराचार्य जी ने दृष्टांत को लाकर रखा। ये दृष्टांत तो हम लोगों ने पुराण के द्वारा सुना है और सूर्य में और चंद्रमा में ग्रहण लगता हुआ अपने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए कहा ये दृष्ट को, देखे हुए को, अनुभव में किए हुए को, जाने हुए को, वस्तु प्रयोग करके अनजान को, न देखे हुए को समझना है, इसके लिए दृष्टांत कहते हैं। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादन सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो भूत सुसुप्त पुमान। अमावस्या की रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता है कि नहीं है? अमावस्या के रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता है कि नहीं? अरे भाई, रात्रि में चंद्र ग्रहण लग भी जाएगा तो देखेगा कौन? पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है, ग्रहण लगने से पहले कैसा दिखता है चंद्रमा? पूरा का पूरा दिखता है, उसका प्रकाश सभी को अनुभव में आता है। और उसी पूर्णिमा के रात्रि को जब खग्रास चंद्र ग्रहण होता है, राहु पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेता है, तब दिखता है कि नहीं कि चंद्रमा ग्रहण से ढक गया है, ये दिखता है कि नहीं है? चंद्रमा नहीं दिखता है, चंद्रमा दिखता है पूर्णिमा की रात्रि जब ग्रहण लगा हो चंद्रमा में, पूरा ग्रहण लगा हो तो चंद्रमा दिखेगा नहीं दिखेगा? लेकिन ग्रहण लगा हुआ है, पूरे के पूरे ग्रहण ने चंद्रमा को ढक लिया, ये दिखेगा कि नहीं है? ये भी नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा, चंद्रमा विशेष नहीं दिखेगा लेकिन सामान्य दिखेगा कि यहीं पर चंद्रमा है और यहीं पर ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा को ग्रहण ने पूरी तरह ढक लिया है, ये दिखाने वाला कौन है? चंद्रमा ही है। इसको लेकर बुद्धिष्टों ने कहा कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था और उसी अभाव से, शून्य से सारे जगत पैदा हो गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं कुछ नहीं था, ये बात कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? चंद्रमा ढक गया है, दिख नहीं रहा है, ये बात कैसे पता चलेगा? चंद्रमा से ही पता चलेगा। विशेष चंद्रमा का विशेष अनुभव भले न दिखा हो इंद्रियों से, लेकिन फिर भी राहु ग्रस्त चंद्रमा तो दिख रहा है। इसी तरह जैसे विशेष सूर्य न दिख रहा हो लेकिन राहु ग्रस्त सूर्य तो दिख ही रहा है। दिन के समय में पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो उस अवस्था में सूर्य का दर्शन नहीं होता। इन आंखों से सूर्य का दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है सूर्य, पूरी तरह ढक जाता है। कहा जाता है कि आज सूर्य पूरी तरह ढक गया, सूर्य पूरी तरह ढक गया, कैसे पता चला? सूर्य से ही पता चला, क्योंकि यह भी दिखेगा तो सूर्य की रोशनी से है। इसी तरह सुसुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा के अवस्था में सारे करणों का उपसंहार हो जाने पर, ध्यान देना इस समय तो करणों का उपसंहार नहीं है, हमारी करणें अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, मन भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, मन विषय, इंद्रियां भी अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है, इस समय पदार्थ स्पष्ट भान हो रहा है। लेकिन जब गहरी निद्रा में हम चले जाते हैं तो हमारे करणोपसंहरणतः सारे करण करणों का उपसंहार होता है, अविद्या में, अज्ञान में, करणों का उपसंहार होता है। आपकी इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिया, अंतकरण, चतुष्टय, 14 चीज, प्राण नहीं, हाँ, ये 14 चीज अविद्या में लीन हो जाते, उपसंग्रहित होते हैं। और वो जो अविद्या है उस आत्मा को, कुटस्थ को, आत्मा के स्वरूप को ढक देता है। कैसे ढकता है? जैसे राहु सूर्य को या चंद्रमा को ढक लेता है, उसी तरह जिस अविद्या में ये करणे उपसंग्रहित हुए हुए हैं, वो अविद्या उसके स्वरूप को ढक देता है। इसी के चलते अन्य भी नहीं दिखते हैं, वह विशेष रूप में नहीं दिखता है, फिर भी यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर सूर्य नहीं है। ग्रहण के समय में भी सूर्य किस पॉइंट है, किस एंगल में है, यह भान रहता है कि नहीं है? किसके द्वारा? सूर्य ही तो बता रहा है। इसी तरह सुषुप्ति अवस्था में भी एक चीज वहां रहता है, सन्मात्र। करणों का उपसंहार होकर अविद्या के द्वारा उस आत्मा के स्वरूप का आवृत्त होने पर भी उस आत्मा की केवल सत्ता मात्र का भान होता ही रहेगा, सत्ता का अपलाप नहीं होता है। जैसे राहु के द्वारा ग्रसित होने पर भी सूर्य की सत्ता का भान होता है, सूर्य की सत्ता, जैसे रात्रि में सूर्य की सत्ता का भान नहीं होता, दिन में चंद्रमा की सत्ता का भान नहीं होता है, लेकिन ग्रहण लगने की अवस्था में सूर्य की सत्ता का भान होता है। ग्रहण की अवस्था में ही चंद्रमा की सत्ता का तो राहु अपलाभ नहीं कर सकता है, विशेष चंद्रमा का भले ही भान न हो, चंद्रमा यहां पर है और ग्रहण यहां पर है, ये भान तो होता ही रहता है। इसी तरह सुषुप्ति में आत्मा भान होता ही रहता है, आत्मा की सत्ता को आवृत्त नहीं कर सकता ज्ञान। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो, वहां राहु है, यहां क्या है? माया समाच्छादनात्, माया है, माया राहु की तरह कूटस्थ को आच्छादन कर रही है, लेकिन कूटस्थ को आच्छादन करते हुए भी कूटस्थ के विशेष रूप को आच्छादित करने पर भी सामान्य रूप को आच्छादित नहीं कर सकती है। राहु सूर्य के विशेष को अंश को आच्छादित करने पर भी सूर्य के सामान्य अंश को आच्छादित नहीं कर सकता, सन्मात्र। इसलिए तो सुषुप्ति अवस्था में तीन चीज का स्पष्ट अनुभव होता है, सत्ता का अनुभव होता है, सत्ता का अपलाप नहीं होता, अपनी सत्ता का, हाँ, और की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सन्मात्र अपनी सत्ता का सुषुप्ति अवस्था में भी अपलाप माने निषेध नहीं होता, सन्मात्र। और दूसरी बात, चिन्ह मात्र, चिन्ह चैतन्य का भी भान होता है, ज्ञान का भी भान होता है, ज्ञान ज्ञान भी रहता है और ज्ञान लुप्त नहीं होता है, सत चित और आनंद सुख का भी भान होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मैं था, सुषुप्ति अवस्था में गहरी निद्रा में तुम थे कि नहीं, तो कोई भले कहे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं था तो नहीं कहेगा, था अपनी सत्ता का उसको भान है, और मैं था ये उसको अनुभव है, और आनंद आया वो कहता है सुखम अहम असोपम, आनंद का भी अपलाप नहीं हुआ है, आनंद को आवृत नहीं किया सुषुप्ति में। इसलिए तो मैं सुख से सोया, कौन जानता था? बोले मैं जानता था, चित्त का आवृत नहीं किया, मैं था सत का आवरण नहीं किया। तो सत चित आनंद ये तीन भाव और अद्वितीय चार भाव सामान्य रूप से सुषुप्ति अवस्था में आत्मा के स्पष्ट भान सभी को होता है, विशेष भान भले न हो, सामान्य भान सत चित आनंद और अद्वितीयता का भान होता रहता है। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः क करणोपसंहरणतो यो भूत सुसुप्तः पुमान। पुमान माने पुरुष जीवात्मा, सुसुप्त अवस्था में अपने सत्ता का अनुभव करता रहता है, अपनी ज्ञान का अनुभव करता रहता है, अपनी आनंद का अनुभव करता रहता है, अपने अद्वितीयता का अनुभव करता रहता है। इसकी व्याख्या फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।